नमस्कार भारत, 18 जून दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। यमन की राजधानी सना में सिलसिलेवार धमाके, 30 से अधिक लोगों की मौत। ग्रीस के ऋण संकट के समाधान की उम्मीदें हुई और कम। ग्रीस ने कहा, कहां से चुकाएं हम।
Η σημερινή κυβέρνηση, η πρώτη μετά από δεκαετίες που δεν έχει συμπράξει.
Λαλίτ Μόδι की मदद के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी।
Mr. Lalit Modi now has an Indian passport.
चिदंबरम कह रहे थे कि ललित मोदी के पास अब दोबारा से भारतीय पासपोर्ट है। केंद्र सरकार ने उन्हें भारत वापस लाकर मुकदमा चलाए जाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं।
भारत बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मीरपुर में। जानेंगे आज क्या कुछ छपा है अखबारों में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। यमन की राजधानी सना में शिया मस्जिदों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिनमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन बम धमाकों का निशाना शाम की नमाज पढ़ने आए लोग और हूती विद्रोहियों के दफ्तरों को बनाया गया। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि इस तरह उन्होंने हूती विद्रोहियों से प्रतिशोध लिया है। दूसरी तरफ जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी यमन की निर्वासित सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम पर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के दो सबसे वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका इराक के लिए 24,000 सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य किसी हालत में पूरा नहीं कर पाएगा। अमेरिका के रक्षा सचिव एश कार्टर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्टिन डेम्सी ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि अमेरिका का प्रशिक्षण कार्यक्रम उतनी संख्या में जवानों को आकर्षित नहीं कर पाया जितने की उम्मीद की गई थी। उन्होंने इराकी सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में अधिक प्रतिबद्धता दिखाए और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई के लिए और अधिक सुन्नी मुसलमान जवानों को भर्ती करे। केंद्रीय अफ्रीका के देश चैड के अधिकारियों ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। ये निर्देश सोमवार को हुए आत्मघाती हमलों के बाद दिया गया। इन हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए थे। धार्मिक नेताओं से मिलने के बाद चैड के प्रधानमंत्री कालज्योबे पाइमी दियोबे ने यह घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि नाइजीरिया के इस्लामिक गुट बोको हराम ने यह हमला करवाया था और बोको हराम अब महिला आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगा है। बुर्के की वजह से उनको पहचान पाना मुश्किल होता है। बुर्का पहनना या ऐसा कोई कपड़ा पहनना अब निषेध है जो आंखों के सिवा सब कुछ ढक लेता हो। बुर्का पहनना तुरंत बंद हो जाना चाहिए। सिर्फ सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में बुर्का प्रतिबंधित है। सुरक्षा बलों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे बाजार जाकर सभी बुर्कों को जब्त कर लें और उनमें आग लगा दें। ये थे प्रधानमंत्री कालज्योबे पाइमी दियोबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच ने कहा है कि वे सीमा पर एक दीवार खड़ी करने के हंगरी के फैसले पर हैरान और आहत हैं। सर्बिया से लोगों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए हंगरी 175 किलोमीटर लंबी सीमा पर 4 मीटर ऊंची कांटेदार दीवार खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री वुचिच ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि आज की दुनिया में कोई इस तरह दीवार खड़ा नहीं करता। संवाददाताओं का कहना है कि हंगरी का ये फैसला दक्षिणपंथी फिदेस सरकार के वक्तव्यों पर ही आधारित है। यूरोपीय संघ की सरकारों में सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बन गई है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध आगामी 6 महीनों के लिए जारी रखे जाएं। एक साल तक क्रीमिया में निवेश न करने पर भी समझौता हुआ है। रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का साथ देने की प्रतिक्रिया के तौर पर एक साल पहले ये प्रतिबंध लगाए गए थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन भर की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं यमन से, जिसे विश्व मानचित्र में एक ऐसे चौराहे के तौर पर देखा जाता है जहां से अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के लिए रास्ता निकलता है। यमन की राजधानी सना में शिया मस्जिदों में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। सना से मिल रही खबरें हैं, उनमें कहा गया है कि इन धमाकों में अभी तक 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। धमाकों के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद अल कनीस ने बताया।
फजा सुमेना अल इंफिजार
मोहम्मद अलकनीस कह रहे थे, अचानक धमाके की आवाज आई, मैं अपनी दुकान के बाहर निकला तो खून से लथपथ बच्चे नजर आए। धमाका इतना जोरदार था, किसी की आंख में चोट आई, किसी का पैर जख्मी हुआ और कुछ के चेहरों में छर्रे लगे। इस हमले और इन तमाम धमाकों की जिम्मेदारी सुन्नी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने इससे पहले भी मस्जिदों पर हमला किया है जहां शिया हूती विद्रोहियों का आना जाना रहा है। यमन की राजधानी सना पर पिछले साल सितंबर में हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती गईं और राष्ट्रपति मंसूर हादी को वहां से भागना पड़ा। हूती विद्रोहियों का दबदबा खत्म करने के लिए इस साल मार्च से ही सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले करती रही है, लेकिन हूती विद्रोहियों का दबदबा उतना कम नहीं हुआ। अगली खबर यूरोप के उस देश से जिसे किसी जमाने में यूनान कहा जाता था। यूनान को अब ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ग्रीस की माली हालत ऐसी हो गई है कि बैंक ATM से पैसा निकालने गए व्यक्ति को पता नहीं होता कि मशीन में पैसा है भी या नहीं। ग्रीस की माली हालत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई है। देश के सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है कि ग्रीस को यूरोजोन और यूरोपीय संघ से बाहर होना पड़ सकता है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ प्रगति सक्सेना।
ग्रीस के कर्ज का संकट गहराता जा रहा है। $264 अरब की उधारी चुकाने के लिए ग्रीस के पास सिर्फ 14 दिन बचे हैं। आज लग्जमबर्ग में यूरोजोन के वित्त मंत्री इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसमें ग्रीस की आर्थिक मदद कार्यक्रम को खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है। इसे ग्रीस में एक मुद्रा का चलन खत्म हो सकता है और उसे यूरोजोन से बाहर निकलने के लिए बाध्य भी होना पड़ सकता है। ग्रीस के सेंट्रल बैंक ने पहली बार चेतावनी दी है कि ग्रीस को यूरोजोन छोड़ना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता और ग्रीस की सरकार किसी समझौते पर न पहुंच पाने के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। ग्रीस की संसद के अध्यक्ष जोई कॉन्स्टांटिनोपोलू ने कहा कि ग्रीस को अपने मूलभूत अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए। दशकों के बाद मौजूदा सरकार ने ना तो सरकारी कर्ज बढ़ाया है, ना ही नया उधार लिया है। सरकार को संसद की सहमति से इस कर्ज को खारिज करने के लिए तमाम तर्कों और साधनों का इस्तेमाल करने का हक है, खासतौर पर तब जब किसी भी तरह के भुगतान से जनता के जीवन, उसके मूलभूत अधिकार और लोकतंत्र खतरे में पड़ता हो। जोई कॉन्स्टांटिनोपोलू के शब्द। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुएल वास ने इस पर बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है।
इस पर फ्रांस का रुख बहुत साफ है। ग्रीस को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिए और आने वाले दिनों में यूरोपीय संघ और फ्रांस हर संभव कोशिश करेगा कि इस संकट का कोई ठोस हल निकल जाए जो ग्रीस के लोगों की इच्छाओं और यूरोप के वित्तीय मुद्दों के अनुकूल हो।
मैनुएल वास के शब्द। ग्रीस के आर्थिक प्रवक्ता यूक्लिड सकालोटोस ने चेतावनी दी है कि उनके देश के पास इतनी वित्तीय सामर्थ्य है ही नहीं कि वह उस उधार को चुका पाए। उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि भुगतान के किसी ऐसे समझौते पर दस्तखत करना ठीक नहीं होगा जिसका पालन ग्रीस कर ही ना पाए, क्योंकि उससे देश में मंदी और आर्थिक संकट पहले से अधिक गहरा जाएगा और ये दुष्चक्र रुकेगा नहीं। हालत इतनी गंभीर है कि ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वेरोफाकिस ने कहा है कि वे अपने देश को इस संकट से उबारने के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी संस्थान के प्रतिनिधि, वित्त मंत्री, चांसलर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से बात करने के लिए तैयार हैं जिसके पास इस संकट का समाधान हो, जो हमें इस 5-6 साल के कर्ज के संकट से और ग्रीस की अर्थव्यवस्था को मंदी से उबार सके। यानिस वेरोफाकिस के शब्द। ग्रीस का ये संकट शुरू हुआ वर्ष 2009 में, जब आर्थिक मंदी पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रही थी। लगातार घाटे के बजट और ढांचागत कमजोरियों ने यूरोप में सबसे पहले ग्रीस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी थी। देश की माली हालत का अंदाजा दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को तब लगा जब ग्रीस ने घोषणा की कि वह अपने घाटे के आंकड़ों को कम करके बता रहा है। नतीजा ये हुआ कि सभी वित्तीय बाजारों ने ग्रीस से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। ग्रीस को इस संकट से उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपीय आयोग ने उसे लगभग $264 अरब का कर्जा दिया। अब इस राशि का भुगतान करने के लिए भी ग्रीस के पास पैसा नहीं है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि भुगतान की शर्तों को ग्रीस के अनुकूल बनाया जाए। अगले कुछ ही दिनों में यूरोपीय संघ जो भी फैसला करेगा, ग्रीस का आर्थिक भविष्य उसी पर निर्भर करेगा।
रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। यूरोप से सीधे रुख करते हैं भारत का। ज्यादा दिन नहीं हुए एक पखवाड़े पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के एक साल के कार्यकाल में किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन क्रिकेट आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं के अभियुक्त और लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे ललित मोदी की मदद के मुद्दे पर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर और हमलावर होती जा रही है। पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की फिर से मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को चेन्नई में कहा कि ललित मोदी के आरोपों का पूरा जवाब ब्रिटेन को लिखे पत्रों से मिल सकता है, इसलिए सरकार को इन्हें जारी करना चाहिए।
चिदम्बरम कह रहे थे कि ललित मोदी के पास अब दोबारा से भारतीय पासपोर्ट है, तो फिर केंद्र सरकार ने उन्हें भारत वापस लाकर मुकदमा चलाए जाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं?
ललित मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी और खासकर चिदंबरम पर राजनीतिक बदले के तहत निशाना साधने का आरोप लगाया था। उधर इस मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने उनके इस्तीफे की मांग की।
मालिक पार्टी जानते हुए कि मैं ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही हूं जो भारत में अनगिनत कानून तोड़कर भागा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उन्होंने इस काम को किया, उसके बाद ईमेल से साफ उजागर होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड नहीं जा सकी, लेकिन ललित मोदी जी का पूर्ण समर्थन उन्होंने किया है।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी सुषमा स्वराज के बचाव में लगातार खड़ी नजर आ रही है। बुधवार को सुषमा के बचाव में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आए।
इन द केस ऑफ सुषमा स्वराज नॉट ओनली शी हरसेल्फ बट द पार्टी प्रेसिडेंट।
रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि सुषमा स्वराज के मामले में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली समेत उन्होंने भी साफ कर दिया है कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद मानवीय आधार पर की और भाजपा पूरी तरह से उनके समर्थन में है।
रविशंकर प्रसाद ने सुषमा स्वराज का तो बचाव किया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ वो खुलकर खड़े होते नहीं दिखे। सुषमा स्वराज को अपनी पार्टी के अलावा राहत का एक और मौका तब मिला जब उनके बचाव में यूपीए के घटक दल एनसीपी के नेता शरद पवार आए।
मुझे लगता है कि एंटायर इशू को डिस्प्रोपोर्शनेटली पब्लिसिटी मिल रही है, इससे कुछ ज्यादा मुझे कहना नहीं। किसी ने किसी के साथ वहाँ मुलाकात की वगैरह कुछ हुआ, इतनी इस बारे में दो तीन दिन से जो सब पब्लिसिटी चालू है मुझे भी आश्चर्य लग रहा है।
लेकिन एनडीए के पूर्व घटक दल जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव ने सुषमा स्वराज को इस्तीफा देने की सलाह दी।
हम लोगों का साथ सुषमा जी के साथ बहुत पुराना है, इसलिए बहुत छिछालेदार हो गए उन्हें, ये पद पर बने रहना जरूरी नहीं है, इस्तीफा कर देना चाहिए।
सुलह सफाई की कोशिशों के बीच वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इसको लेकर बहस चलती रही कि ललित मोदी का पासपोर्ट निरस्त किए जाने के फैसले को रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ किसे अपील करनी चाहिए। उच्च न्यायालय का आदेश पिछले साल अगस्त में आया था।
भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर मंडरा रहे हैं सियासत में खतरे के बादल, और सुना है रेगिस्तान के बवंडर बड़े भीषण होते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सियासत के लिए ललित मोदी किसी बवंडर की तरह ही तो लग रहे हैं। चलेंगे जयपुर थोड़ी देर बाद ये जानने, वहाँ छपने वाले अखबारों के पहले पन्ने आज क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगली खबर दक्षिण भारत से, ये खबर उस राज्य से जुड़ी है जिसने इसी महीने 2 जून को अपनी पहली सालगिरह मनाई है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जो 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। हालांकि हैदराबाद अभी इन दोनों ही राज्यों की राजधानी बनी हुई है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश ने कहा है कि वो हैदराबाद में अपने अलग पुलिस थानों का गठन करेगा। क्या है ये मामला, समझने के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने बात की स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी से।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ टेलीफोन टैपिंग के मामले में करीब 85 FIR दर्ज किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये निर्णय लिया गया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम माने SIT इन पूरे FIR में जो भी कंप्लेंट हुआ है उसकी जांच करेगी। ये मामला थोड़ा अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि तेलंगाना सरकार इस मामले का मूल जो कारण है इसको कैश फॉर वोट स्कैम बताती है, जो वोट के लिए नकद का घोटाला समझते हैं कहती है, और आंध्र प्रदेश इसको टेलीफोन टैपिंग का केस मानती है। मतलब ये कि ये मामला इसलिए आया क्योंकि जब तेलंगाना में विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहे थे उस वक्त रेवंत रेड्डी नाम के एक टीडीपी एमएलए को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एमएलसी को पैसे देने की घोटाले में फंस गए थे। तो उसके बाद तेलंगाना सरकार ने इस तरह का एंटी करप्शन ब्यूरो के तरफ से इतने लोगों की पूछताछ की है, टीडीपी के एमएलए को भी थोड़े लोगों को गिरफ्तार की है। ऐसा लग रहा था, एक माहौल बनाया गया जैसे कि चंद्रबाबू नायडू को भी इस मामले में फंसाएंगे। तो इसके बाद ये चंद्रबाबू नायडू ने भी ये प्रपोजल था कि आंध्र प्रदेश को भी एक हैदराबाद में एक पुलिस स्टेशन बनाने की एक सहूलत दी जाए।
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यपाल जो है नरसिंहम उनकी भी बड़ी आलोचना की है, क्या वजह है?
लॉ एंड ऑर्डर राज्यपाल की जिम्मेदारी है और जब उनकी जिम्मेदारी है और दोनों तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के मंत्रियों के खिलाफ या एमएलए के खिलाफ अगर केस दर्ज कराती गई तो राज्यपाल उसमें कुछ तो उनका एक रोल होना चाहिए था। हालांकि राज्यपाल से दोनों मिले हैं, मतलब दोनों मुख्यमंत्री तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बहुत मुलाकात किए हैं, बहुत वक्त मीटिंग किए हैं। और उसके अलावा केंद्र सरकार से जब चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करके आए तो उसके बाद से केंद्र के होम मिनिस्ट्री के अधिकारी भी वहां हैदराबाद पहुंचे और राज्यपाल के साथ बातचीत की।
कुछ मुद्दों को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच हो रही है तनातनी, बता रहे थे स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी। ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। और आइए सीधे चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां हमारे सहयोगी नारायण बारेठ टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बताएं जयपुर से छपने वाले समाचार पत्रों में आज कौन सी खबरें प्रमुखता से छपी हैं?
जो कुछ 5 दिन से दिल्ली में चल रहा था, आज अखबारों की सुर्खियां बोल रही है कि वो सारा मुद्दा और विवाद राजस्थान में केंद्रित हो गया है। मेरे सामने राजस्थान पत्रिका, भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए, हिंदुस्तान टाइम्स, नवज्योति, राष्ट्रदूत सभी अखबार हैं और सभी में पहले पन्ने पर इससे जुड़ी खबरों को तवज्जो दी गई है। अखबारों के इन शीर्षकों की ध्वनि निकलती है कि वसुंधरा राजे के सामने बहुत मुश्किलें हैं। भास्कर ने पहले पन्ने पर स्थान देते हुए सुर्खी लगाई है, ललित मोदी विवाद और गहराया, सुषमा राजे पर भी कांग्रेस ने तीखे सवाल किए और इस्तीफा मांगा। और इसी खबर में कहा गया कि दुष्यंत को ललित मोदी ने 11 करोड़ का फायदा पहुंचाया है, कांग्रेस ने ऐसा कहा है। बीजेपी ने कहा कि सब झूठ है, सबूत पेश करे। अखबार ये भी कह रहा है कि वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को फोन किया, समय मांगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला है। और इससे जुड़ी एक और खबर सभी अखबारों में है कि ओम माथुर, जो राजस्थान से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, उन्हें वसुंधरा राजे के विरोधी खेमे का माना जाता है। राजस्थान पत्रिका ने ज्यादा महत्व दिया इस खबर को, ये कहा कि ललित मोदी प्रकरण में पीएम मोदी और शाह से वसुंधरा राजे ने वक्त मांगा लेकिन नहीं बढ़ा, उन्हें नहीं मिला उन्हें और उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। साथ ही राजे ने अपने और अपने बेटे जो सांसद है झालावाड़ से उनके बारे में पक्ष रखने का वक्त मांगा था लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से हाथ खींच रहा है, सारी कोशिशों के बावजूद उनकी पार नहीं पड़ रही है। और इन खबरों में कहा गया कि बीजेपी बैकफुट में आई है, इसलिए तय हुआ है कि सरकार और संगठन दोनों अपने आप को इस मामले से दूर रखेंगे। राजस्थान में पुर्तगाल के साथ एक समझौता हुआ है, उससे लेकर ललित मोदी का उसमें नाम है। जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है वो कह रहे हैं कि मैं मोदी को नहीं जानता, लेकिन राज्य बीजेपी पूरी तरह इन खबरों के मुताबिक राजस्थान पत्रिका ने लिखा है कि वसुंधरा राजे के साथ खड़ी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी कहते हैं कि ये सब बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रदूत ने पूरा पहला पन्ना ही इन्हीं खबरों को समर्पित किया है और कहा कि भाजपा राज्य के बचाव में आगे नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? अखबार ने सवाल पूछा है और बताया है कि रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है लेकिन वो इनके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली सुर्खी है जेटली सुषमा का बचाव, वो दरअसल उनके अपराध की स्वीकारोक्ति है। डीएनए, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब ने आज पहले पन्ने पे इन खबरों को स्थान दिया है। पंजाब केसरी ने अपना शीर्षक दिया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने पल्ला झाड़ा, राजे की बड़ी मुश्किलें। ऐसी कुछ खबरें और बाकी जो परिणाम आए हैं इंजीनियरिंग परीक्षा के, उसके बारे में कहा कि मध्य प्रदेश ने बाजी मारी, उसके दो लोग अव्वल रहे हैं।
जी बहुत 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 शुक्रिया नारायण बारेठ, ये थे जयपुर से, जो वहाँ से छपने वाले समाचार पत्रों की सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहे थे। और जैसा कि अभी आपने सुना अखबारों की समीक्षा में और समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट में इससे पहले, और ललित मोदी जो हैं और सुषमा स्वराज, इन दोनों से जुड़ा जो विवाद है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, इसे लेकर एक तरह की खींचतान और विरोधाभास की खबरें बीते कई दिनों से लगातार आ रही हैं। इस बारे में समीर आत्मज मिश्र ने ही भाजपा के पूर्व नेता और संघ के विचारक गोविंदाचार्य से बात की।
पार्टी के रोजमर्रा की गतिविधियों से तो मैं बहुत दूर हूँ और पार्टी के लोगों से भेंट भी बहुत कभी कभी होती है, लेकिन जो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं वो इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व में और कैडर में संवाद का अभाव है, विश्वास का अभाव है, और पार्टी के नेतृत्व में आपस में भी संवाद और विश्वास के अभाव के कारण ही ऐसी आशंकाएं कुछ लोग गैरवाजिब ढंग से ही क्यों न हो व्यक्त करते हैं। इसलिए नेतृत्व को चाहिए कि वो विश्वास और संवाद बढ़े कैसे, इस पर गहराई से विचार करें, नहीं तो ये समस्याएँ संभाले नहीं संभलेंगे।
तो क्या लग रहा है आपको, ये स्थिति क्यों आ रही है? अभी साल भर भी नहीं हुआ है सरकार बने हुए, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनी है।
ये भी सब इसी बात से, संख्या बल से केवल सरकार नहीं चलती, साख से सरकार चलती है, इकबाल से सरकार चलती है। इसलिए संख्या बल भले ही हो, लेकिन अगर इतना विश्वास नहीं आपस में रहेगा, भरोसा नहीं बनेगा और मन में लगता रहेगा कि फलाने ने बत्ती लगा दी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पार्टी का काम है, पार्टी संगठन का काम है कि वो ऐसे सलवटों को दूर करता, लेकिन संगठन कहीं अस्तित्व में तो दिखता नहीं है। इन सब से ये बात प्रमाणित होती है कि संगठन एक अनुशासन और संवाद विश्वास के आधार पर चलने के बजाय मनमानी के तौर पर चल रहा है। शायद
ऐसा देखा जा रहा है कि कई जगहों पर संघ के एजेंडे के हिसाब से बहुत से काम नहीं हुए हैं। कश्मीर का मुद्दा है जिसे आपने अभी जिक्र किया, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का ही, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आरएसएस किसी मजबूरी में सरकार का समर्थन कर रहा है, किसी विवशता में सरकार का समर्थन कर रहा है।
नहीं, विवशता मजबूरी की कोई बात नहीं है, वो अभी और मौका देना चाहते हैं, वो जल्दबाजी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एक बात और है, मौका देते देते इतनी न देर हो जाए कि सुधरने की स्थितियाँ ही न बचें। यहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ कि नीतियों के संदर्भ में और प्राथमिकताओं के संदर्भ में इस सरकार ने गलतियाँ की हैं। नीतियाँ स्मार्ट सिटीज़ और बुलेट ट्रेन नहीं हो सकती प्राथमिकता के तौर पर। आपने पंचायती राज का बजट सारा काट कूट कर ख़त्म कर दिया, महिला बाल विकास काट कूट कर ख़त्म कर दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार भाग गई। ये तो तरीका नहीं होता है प्राथमिकता तय करने का। प्राथमिकता है कितना इन्वेस्टमेंट आया, इससे नहीं तय होगा। जीडीपी की ग्रोथ रेट से नहीं तय होगा। अंतिम आदमी को क्या मिला, इससे तय होगा प्राथमिकता का स्तर। तो इसमें दिशा भूल है इस सरकार की, ऐसा कहा जाएगा। भारत को भारत के नाते विकसित नहीं होने की सोचते, भारत का अमेरिका ब्राज़ील बनाना चाहते हैं बिना ज़मीनी हकीकत का अंदाज लिए हुए, इसलिए प्राथमिकताओं में गड़बड़ होती है। दिल्ली और आसपास ये भारत केवल नहीं है, भारत गुजरात इंटू 29 भी केवल नहीं है। भारत विशिष्ट जटिलताओं और विशेष ताकत से भरा हुआ समाज है, एक विशिष्ट प्रकार का सिविलाइजेशनल एंटिटी है। कई साथी संगठन हैं जो इनको सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाए थे। ऐसा स्वदेशी जागरण मंच वाले कह रहे हैं कि भैया FDI इन रिटेल का क्या हो गया, फिर FDI तो आखिर आ ही रही है, हमारी बातों का क्या हुआ। मजदूर संघ वाले कहते हैं लेबर रिफॉर्म्स का क्या हुआ। किसान संघ वाले कहते हैं भैया ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जमीन अधिग्रहण करने की। वो सभी लोग दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, क्षुब्ध हैं। कश्मीर के बारे में भी बहुत लोग बहुत चिंतित हो गए हैं कि अगर ये मान लिया जाता है तो वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए ही जाते हैं, तो भैया आपको किस लिए फिर सत्ता में लाया था, आप भी तो फिर वही कर रहे हैं जो और लोग करते थे, फिर फर्क क्या रहा, इतनी मेहनत किस बात के लिए कवायद हुई है। आप विचारधारा से बिल्कुल प्रतिकूल PDP से मिलकर अनैतिक गठबंधन की सरकार, उसमें भी आपका रोल कुछ नहीं, और झुनझुना दे दिया गया उप मुख्यमंत्री के नाते से। आगे इसके जितने खतरे हैं, आपने कैसी मुसीबत मोल ले ली है देश के लिए।
कश्मीर की बात की, वहाँ आपने बताया कि PDP के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई विवशता थी या भारतीय जनता पार्टी की कोई टैक्टिस थी या इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपनी एक अलग ढंग की पैठ बनाना चाहती है?
मुझे मालूम नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही तो गई कि हम ऐसा उसमें से बदल ला देंगे, उनको परिमार्जित कर लेंगे, पीडीपी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आदि कई बातें कई लोगों ने कही हैं। लेकिन अनुभव क्या बताता है, हमें तो खतरा लग रहा है कि हम इस माध्यम से जम्मू कश्मीर समस्या का फिर से 1950 के दशक की तरह मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देंगे, ये खतरा मुझे उसमें से महसूस हो रहा है।
सरकार के ऊपर एक और बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि सरकार पूरी तरह से केंद्रीकरण कर रही है, सत्ता पूरी जो है व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है, कुछ खास हाथों में केंद्रित होती जा रही है, और सरकार ही नहीं बल्कि इस समय पार्टी भी, उसका भी केंद्रीकरण हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये ऐसा हो रहा है?
मुझे इसका बहुत अंदाज नहीं है सच कहें तो। मैं मोटे तौर पर इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि इसमें जितना ज़्यादा लोगों का निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता होनी चाहिए, सहभागिता नहीं है ऐसा मैं पाता हूँ। जैसे छोटी सी बात है, एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि भाई पहले तो किसी भी मसले पर, जैसे मानो सुषमा जी का ही विषय आ गया, ऐसे किसी भी मसले पर पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी और दिल्ली स्थित कार्यकारिणी के सदस्य इकट्ठे बैठ जाते थे और वहाँ पर इन बातों को आपस में विचार करके किसी एक मत पर पहुँचते थे। अभी तो इन बैठकों का अभाव है और पार्टी कार्यालय सामान्यतः निष्क्रिय सा लगता है, ऐसा लोग वहाँ जाने वाले वो मुझे बताते हैं, मुझे प्रत्यक्ष जानकारी कुछ नहीं है। उस तरह सरकार के अंदर कितने लोग हैं जो बात कर पाते होंगे, लोग बताते हैं बड़ा कठिन है इसमें तो।
भाजपा के पूर्व नेता और संघ के विचारक गोविंदाचार्य जो संकेत कर रहे थे कि सरकार के अंदर कहां तक कितनी बात लोग पहुंचा पाते होंगे, चिंता आशंका जता रहे थे। और इसके साथ ही वक्त हो चला है देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है जानने का, सुनते हैं प्रगति सक्सेना से।
आज से भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो रही है। बांग्लादेश में मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने वाले हैं। सीरिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल रहा है, इस हिसाब से दोनों की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। लग्जमबर्ग में यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच समझौते की पुरजोर कोशिश की जाएगी। हालांकि जानकारों का अनुमान है कि इस मुद्दे पर अगले हफ्ते यूरोजोन के नेताओं की बैठक से पहले कोई समझौता होना बेहद मुश्किल है। उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीप्रास अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में भाग लेंगे। इस फोरम के तहत रूस के निवेशक अपनी सालाना बैठक करते हैं। डेनमार्क में आज आम चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हेली थॉर्निक श्मिट की पार्टी और दक्षिणपंथी विपक्षी दल के बीच कड़ा मुकाबला है।
तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने सुना, मीरपुर में भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें आज आमने सामने होंगी। भारतीय टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में है, लेकिन पूरे मैच की कमान बरखा रानी के हाथों में होगी। बांग्लादेश के आसमान पर बादल हैं और मैच का नतीजा जो भी निकलेगा बारिश की, उसमें बड़ी भूमिका होगी। वैसे किसका पलड़ा भारी है और क्यों भारी है, इस मुकाबले से जुड़े तमाम दूसरे पहलुओं पर पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह की राय हम आपको अगले कार्यक्रम विश्व भारती में सुनवाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक बार फिर विश्व समाचारों का प्रगति सक्सेना से।
बीबीसी समाचार। यमन की राजधानी सना में शिया मस्जिदों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए जिनमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका के दो सबसे वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका इराक के लिए 24,000 सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। केंद्रीय अफ्रीका के देश चैड के अधिकारियों ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। ये निर्देश सोमवार को हुए आत्मघाती हमलों के बाद दिया गया। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्सांद्र वूचिच ने कहा है कि वे सीमा पर एक दीवार खड़ी करने के हंगरी के फैसले पर हैरान और आहत हैं। यूरोपीय संघ की सरकारों में सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बन गई है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध आगामी 6 महीनों के लिए जारी रखे जाएं। एक साल तक क्रीमिया में निवेश न करने पर भी समझौता हुआ है। रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का साथ देने की प्रतिक्रिया के तौर पर एक साल पहले ये प्रतिबंध लगाए गए थे। इस फैसले का मकसद ये संकेत देना है कि रूस और यूरोप के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो पाएंगे जब तक कि यूक्रेन में शांति बहाल नहीं हो जाती। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। हमारे सहयोगी हेमंत कुशवाहा स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे, खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पूरी टीम को अनुमति दीजिए।